ابھی معلوم ہے جو ہے رام کو گنگا سنتا ہے کہتے ہوئے بھارت اس کی راجنیتی پر کھڑا ہو کر کے تب انہوں نے شاسن چلایا اس کی گدی پر نہیں بیٹھے اس کی گدی پر نہیں بیٹھے راجنیتی پر اس کا بھی یہ
کہتے ہیں نا فالو فادر تو کیا قدم کے اوپر قدم رکھ کر کے چلنے کی بات ہے؟ کہا جاتا ہے قدم قدم میں فالو کرنا ہے, تو تین بھائیوں کو دکھایا گیا ہے, بھرت, لکشمن اور شتروگھن. تینوں نے اپنے اپنے طریقے سے فالو کیا, لکشمن نے اپنے طریقے سے فالو کیا, شتروگھن نے اپنے طریقے سے فالو کیا, بھرت نے تو کھڑا ہوئی پکڑ لی. کھڑا مانے پد چن, تو کیا راجسی جیون بتایا ہوگا؟ راجسی جیون نہیں بتایا. دیکھا کہ وہ بنگامی ہو گئے تو ہم بھی اپنا جیون ایسے ہی بتا رہے ہیں جیسے جنگلی بنواسی, ایسے انہوں نے اپنا جیون بتایا.
لکشمی جی کو الو پر بٹھا دیا ہے اس کا.
دنیا کے جتنے بڑے بڑے ساہوکار ہیں ان کی بدھی اوپر لگی ہوئی ہے یا نیچے؟ بابا الو کو کہتے ہیں الٹا لٹکا ہوا ہے. الو مثل بن پڑے ہیں دنیا کے پونجی پتی لوگ, تو ان کی بدھی اوپر لگی ہوئی ہے یا نیچے لگی ہوئی ہے؟ نیچے کی دنیا میں لگی ہوئی ہے. ادھوگامنی بدھی ہو گئی ہے. ایسی ادھوگامنی بدھی جن کی ہو جاتی ہے وہ فالو کرتے ہیں برہما کماریوں کو, اور برہما کماریوں میں بھی جو شریشٹھ برہما کماری ہے لکشمی جو چندرونش سے آتی ہے اس کا پربھاؤ سب سے جاستی ہوتا ہے. تو جب نکلے گی تو دنیا کے بڑے بڑے دھنی مانی سب اس در ایڈوانس میں آ جائے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ لکشمی کی سواری کس کے اوپر؟ ان الوؤں کے اوپر ہوتی ہے. بدھو نہیں فالو, بدھو ہی فالو کرتے ہیں. بدھمان فالو نہیں کرتے برہما کماریوں. باپ کے بچے بدھمان کہیں گے یا بدھو کہیں گے؟ بدھمان بھلے غریب ہے لیکن بدھی سے بڑے پورے ہیں. ان کو الو نہیں کہیں گے. جو پمپ اینڈ شو کو فالو کر رہے ہیں وہ بدھو الو ہے. اور
بارہ جیوتیرلنگ کا کیا بھاؤ
ہے؟
بارہ جیوتیرلنگ کا
کیا کریں؟ بارہ جیوترلنگ بولو.
بارہ جیوترلنگ مطلب کس کا فرق ہے؟ مطلب
سوریہنسی بارہ آتمائیں ہیں.
مطلب وہ بارہ باپ کے سمان اسٹیج بنانے والے,
باپ سمان اسٹیج بناتی ہیں उनमें बाप प्रवेश करता है स्पेशली, तो वो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं है कि भगवान प्रवेश करता है, कौन प्रवेश करता है, हैं? हैं? हाँ, मैं तो एक व्यापी होकर आता हूं, बाकी तुम बच्चों में बाप दादा प्रवेश करते हैं। राइटियस में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है और लेफ्टिस्ट में बाप प्रवेश करता है।
बाबा अभी एक घटना हुई रविशंकर पर गोली चलाने की
है,
तीन धर्मगुरुओं को टीवी चैनल पर इंटरव्यू लिया गया
है,
तीन धर्मगुरुओं का टीवी चैनल पर इंटरव्यू लिया गया, उनसे पूछा गया क्या आपको अपनी सुरक्षा की, अपनी जो मौत का डर है उसके लिए सरकार से सहयोग है कि नहीं,
सहयोग चाहिए सरकारी।
तो बाबा रामदेव ने कहा हम भी नहीं मांगेंगे, सरकार से भी नहीं मांगेंगे,
अपने आप मिल जाए तो ठीक है,
अपने आप मिल जाए तो ठीक है। दूसरी तरफ ये भी चिंता होगी उनको कि सुरक्षा होनी चाहिए, और वो खुद लाखों लोगों को आमंत्रित करते हैं, एक जगह गैदरिंग करके इकट्ठा करते हैं, तो क्या इस पर सरकार उनको सुरक्षा दे पाएगी या उनका इकट्ठा गैदरिंग करना बंद किया जाएगा, ऐसा संभावना क्या हो सकता है?
अभी फिलहाल थोड़े समय पहले आशाराम बापू के कोई संगठन में भोजन के बांटने के समय भगदड़ पड़ गई और ढेर के ढेर लोग मर गए, तो सरकार के सामने ये प्रश्न पैदा हो गया क्या ये गैदरिंग बंद की जाए, करा दी जाए, लेकिन ये तो धर्म का मामला है, इसमें संविधान के अनुसार सरकार कुछ भी नहीं कर सकती।
उनको मौत की भी चिंता होगी, उनको तो मारे जाएगा गोली,
मारे तो सारे ही जाएंगे, बचे हो तो इतना उपदेश देते हैं कि कर्मों के अनुसार ही तो प्राप्ति होती है, तो फिर अब ये सब ये चिंतन क्या साबित करता है कि धर्मोपदेश भूल जाता है, कर्म ऐसे किए होंगे तो कोई गोली मार देगा, नहीं किए होंगे तो कोई गोली से मार नहीं सकता।
बाबा 2028 तक एडवांस पार्टी कितने आत्मय प्रत्यक्ष, 2,25,000 आत्मय प्रत्यक्ष होंगे।
रुद्रमाला में जो भी पुरुषार्थी तबक्का है, राजयोग के पुरुषार्थी कितने हैं?
4,500।
अरे वो राजयोग के पुरुषार्थी है, राजयोग सीखते हैं, राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पवित्रता का पालन कर रहे हैं, 4,500 में राजवर्ग की आत्माएं हैं, राज परिवार की ही आत्माएं हैं राजयोग सीखने वाली, या प्रजावर्ग की भी आत्माएं हैं, तो प्रजावर्ग वाले पुरुषार्थ करते हैं।
16,100।
हाँ जी, और
बाबा आज की मुरली में एक पॉइंट था, आयु के हिसाब से लक्ष्मी नारायण को सतोप्रधान कहेंगे, तो सतोप्रधान
आयु के हिसाब से
लक्ष्मी नारायण को सतोप्रधान कहेंगे, सतो कहेंगे,
हाँ,
तो आयु से इसका कोई रिलेशन है सतोप्रधानता का, कैसे ये कैसे?
जब शादी हो जाती है तो आय की कोई लिमिट होती है कि ऐसे ही हो जाती है?
लिमिट
होती है। ब्रह्मचर्य है, अकेले रहने में ब्रह्मचर्य है, और साथी है तो कम से कम बुद्धियोग तो जाएगा एक दूसरे की तरफ, नहीं जाएगा? बुद्धियोग निराकार से हट करके एक दूसरे साकार की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा? तो थोड़ा बहुत घाटा आएगा कि नहीं आएगा?
पंडित जी पाला में क्यों कहते हैं? पंडित जी पाला में
हाँ, पांव बुद्धि की निशानी है। लागे माने आपकी बुद्धि जहाँ तक है वहां तक हमारी बुद्धि भी जाए, हमारी बुद्धि रूपी आत भी वहां तक पहुंच जाए, वो मतलब है। हमारी बुद्धि की पहुंच वहां तक हो जाए जहां पंडित जी की बुद्धि पहुंची हुई है। और मुसलमानों में 786 संख्या का विशेष महत्व है। इसका अर्थ क्या है? है सत्युग में जब पहले लक्ष्मीनारायण का राज्य होगा तो उनके जो बच्चे पैदा होंगे वो किस धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे? है इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे। इस्लाम धर्म में जो कन्वर्ट होने वाले बच्चे हैं वो सत्युग में कितने जन्म लेंगे? है 7 जन्म लेंगे। तो 7 का कनेक्शन है ये। टोटल 3 अंक है, 7, 8 और 6 मिला के कितने हुए? तो मुसलमान कर्म वाली आत्मा जो पहले लक्ष्मीनारायण के घर में जन्म लेंगी तो पहला जन्म तो उनको बहुत छोटा थोड़ा हो गया, बचपन ही है सब, बड़े होंगे तो दूसरी पीढ़ी हो जाएगी। तो टोटल मिला के उनको 21 जन्म मिलते हैं, क्योंकि त्रेता में जैसे राधा कृष्ण वाली आत्माओं के 13 जन्म होंगे वैसे उनके भी 13 जन्म हो जाए। तो तीनों अंक मिलाकर के 21 बनता है। और
बाबा इस बार चंडीगढ़ की इतनी देर से क्यों आ गए?
चक्कर बहुत देर हुआ लगा।
अब पंजाब में कितने जिले हैं? है? कितने जिले हैं?
पीछे बढ़ गए 4-5 और पहले 13
थे। अभी कितने जिले हैं पीछे और आगे? है
बाबा 18
18 जिले हैं। 18 मिनी बजवन खुल जाएंगे तो जल्दी जल्दी आवेंगे या देर से आवेंगे? देर से ही आना होगा। अरे एक खुला है तो पहले 2 महीने में एक बार,
पहले 1 महीने में एक बार
नहीं, 2 महीने में एक बार, तो अभी 4 महीने में एक बार है। अरे 1-2 महीना तो ऐसे होता ही रहता है। और
बाबा जब शरवण कुमार को दशरथ ने तीर मारा तो शरवण कुमार के माता पिता ने उसको श्राप दिया कि जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़पे हैं ऐसे तुम भी पुत्र के वियोग में तड़पोगे, इसका बेहद में क्या अर्थ है?
श्रवण कुमार है कौन? प्रजापिता श्रवण कुमार है। और उनके अम्मा बाप कौन है? उनके अंधे अम्मा बाप कौन है? मम्मा और बाबा। तो मम्मा और बाबा वो तो हो गए माँ बाप, श्रवण कुमार हो गया प्रजापिता। अब तीर मारा किसने? दशरथ कौन है?
दशरथ।
अरे दशरथ जो राम है किसका बेटा है? दशरथ का बेटा है। तो ब्रह्मा बाबा जब शरीर छोड़ते हैं उस समय यज्ञ में उस समय तक दशरथ तैयार हो जाते हैं कि नहीं है? हो जाते हैं। तो दशरथ माने रावण, दशाशीष। और रावण तो तीर मारेगा कि नहीं? किसको मारेगा? है रावण को काम है, धंधा है, माया रावण का काम है कि अपने दुश्मन को मारेगा। तो तीर मारता है। तो ऐसे शास्त्रों में दिखा दिया है कि श्रवण मर गया। वास्तव में श्रवण मरता है क्या? है वो मरता है कि मार के मरता है? मार के भी नहीं मरता है। तब कथा कहानियां बना दी है। और अरे क्या नहीं बात होती है। और संतान असली बाप का बच्चा, और एक होता है दोगली संतान। ज्यादा सच्चाई सफाई किसमें होती है? ज्यादा प्योरिटी किसमें होती है? है जो असली बाप का बच्चा होगा उसमें ज्यादा सच्चाई सफाई होगी, कुल की आन बान ज्यादा होगी, प्योरिटी भी ज्यादा होगी। वैश्या की संतान होगा तो नहीं होगी। प्रश्न आया है देसी गाय का दूध पीने से अधिक शक्ति प्राप्त होती है या दोगली गाय का दूध पीने से अधिक शक्ति प्राप्त होती है? जो विदेश से गायें आ रही है ये सब दोगली है या असली देसी नस्ल है? अरे खेती में भी इनका असर दिखाई पड़ता है। जो विदेशी गायें आती हैं उनका गौमूत्र, उनका गौरस, गोबर है और मूत्र ऑर्गेनिक खेती में काम नहीं आता। ऑर्गेनिक खेती में देसी गाय का गौमूत्र और गोबर बढ़िया काम करता है।
बाबा क्या भैंस के हिसाब से अच्छी है ये दोगली गाय?
भैंस तो धर्मराज का परिवार है, भैंस बुद्धि धर्मराज तो ऐसे है जैसे राजा के राज्य में दंड देने वाले को क्या कहा जाता है? किसी को फांसी देनी हो जल्ला। जो अकल ज्यादा चलाने वाले होते हैं ना, उनको भावना भी ज्यादा होती है। वैसा जगन्य काम नहीं कर सकते, ऐसा जगन्य काम उनसे करवाया जाता है जिनकी बुद्धि सीधे रास्ते पर चले। जैसा रास्ता बता दो बस चुपचाप आंख बंद करके उसी रास्ते पर चले। और
बाबा जी ने कहा है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, एक कहावत कहिए कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं
है,
हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती
है।
दूसरी तरफ ज्योतिषी कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड।
क्या मतलब?
चेहरा आदमी के दिमाग को बता देता है कि क्या है।
तो चेहरा भी तो कोई चमकने वाला होता है,
तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को क्रॉस
नहीं नहीं क्रॉस नहीं करता है। चेहरा दो तरह का नहीं होता है, चेहरा एक होता है जिसमें आंखों में चमक ज्यादा जास्ती दिखाई पड़ती है, प्योरिटी दिखाई पड़ती है। एक चेहरा ऐसा होता है जिस चेहरे में पर्सनैलिटी तो बड़ी ब्लंट दिखाई पड़ती है लेकिन अंदर से पापाचार बहुत भरा हुआ है। इतनी ग्रैंड पर्सनैलिटी होती है कोई के भी सामने जाएंगे तो डर जाएगा, मान लेगा बात को। चेहरा नहीं दो तरह का होता है,
लेकिन निष्ठा का फोटो नहीं खींचा जा सकता
है।
निष्ठापूर्वक जो शैलिक आदमी है वो निष्ठापूर्वक काम कर रहा है, उसके चेहरे से कैसे जान लेंगे कि इसकी 100% निष्ठा देश के प्रति है।
मनुष्य की बाहरी आकृति मन की एक प्रतिकृति है, बाहरी चेहरे मोहरे से जाना जा सकता है, ये भी एक विद्या है। मस्तक देख करके आंखों की चमक देख करके लोग अंदर की बातें बता देते हैं। जिस परिवार में पीढ़ियों से गौ कसी होती आई हो उनके चेहरे देखो, और ब्राह्मण परिवार के जो पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मण कर्म करते चले आए हो और अच्छे ब्राह्मण हो सदाचारी, उनके चेहरे देखो। अलग दिखाई देंगे, नाटक में ड्रामाबाजी में जो हीरो दिखाएंगे उसका चेहरा मोरा कैसा बनाते हैं, और जो विलियन दिखाते हैं उसका चेहरा मोरा कैसा होता है? रावणनुमा होता है। और
जिसने गीता पाठ करना हो वो युग नहीं निकले है और सात सत्र रात में भट्टी कर चुके तो जब बाबा नहीं जाएंगे, जिसने ले सात सत्र रात में भट्टी कर चुकी हो
कहाँ
कोई
कोई जगह है
गीता
भट्टी ऐसी कर चुकी हूँ, कोने बताया जाए कि बच्चे बतलाओ क्लास में, बाबा के क्लास में बच्चे नहीं आने चाहिए, भट्टी में बच्चे नहीं जाने चाहिए, और वो बच्चे के बच्चे ढेर सारे ले आएंगे, ऐसी आत्मा इकट्ठी हो जाएगी। न टीचर की बात को मानेगी न मुरली की बात को मानेगी, तो फिर बाबा के चक्कर पहले लगेंगे बाद में लगेंगे लगेंगे धीरज धर्म भारत की कन्या माता के मुख से ज्ञान दूध सुनना क्यों अच्छा है? अरे विदेशी नदियों में कोई स्नान करता है? नहीं करता। भारत की नदियों में स्नान करते हैं। भारत की नदियों में भी उत्तर भारत की नदियों में स्नान करना ज्यादा प्रसिद्ध है या दक्षिण भारत की नदियों में? उत्तर भारत में ज्यादा स्नान करते हैं। वही भावना की बात आ जाती है। तो सच्चा ज्ञान मिलेगा, भगवान प्रत्यक्ष होगा, तो उत्तर भारत की जो कन्याएं माताएं हैं वो गंगा के स्टेज पर निकलेंगी। बोला ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में, तो साधु सन्यासी भी उनको नतमस्तक हो जाएंगे।
बाबा इसलिए मैंने पढ़ाया छह पांच को छत्तीसगढ़ में हमारे 76 आदमी कैजुअलिटी हुआ माइंस ब्लास्ट, उनको आगे कौन सा जन्म मिलेगा? उनको कौन से जन्म में शहीदों में माने जाएंगे या वो कैसे माने जाएंगे? 76 आदमी कैजुअलिटी हुआ ना हमारी जो पे, कैजुअलिटी माइंड से ब्लास्ट हुआ ना,
नक्सलियों ने
मारे थे 76 आदमी,
नक्सलियों ने
फौजी आदमी मारे थे
76
कैजुअलिटी हो गई है।
76 लोगों को मार दिया।
तो ये पूछ रहे हैं कि उनका आगे जन्म कैसा होगा, वो शहीदों की लिस्ट में होंगे या कैसे?
शहीदों की लिस्ट तो उनको की जाती है जो कोई अच्छे काम के लिए निकले हों फिर मारे जाएं। वो किस काम के लिए निकले हुए थे?
उस छर्चिंग के उग्रवादियों को भगाने के लिए, वो पब्लिक को तंग करते हैं, उनके हेल्प के लिए गए थे, सिर्फ पब्लिक की मदद के लिए कहते
हैं। जैसे ऑनरेरी मिलिट्री बन के गए
थे, सीआरपीएफ के थे,
सीआरमिलिट्री के थे,
तो वो तो अच्छे मकसद से निकले ना।
हाँ जी,
जो दुख देने वाले हैं।
हाँ जी, हाँ जी, उनको पकड़ने,
दुख देने वालों को पकड़ा जाए या तो उनको अंत खत्म किया जाए।
नक्सली की खोज में गए थे, उनसे लड़ने के लिए गए थे, उन्होंने उल्टा वापसी में उनके ऊपर तैयारी का अंबूस लगा के और माइंस लगा के उनको घेरे में लेके उनको ऊपर अटैक किया।
एक पॉइंट बाबा खुद सामने आया
है, सीधी एक बात का पूरा होने दो।
इसी में एक पॉइंट सामने आया है कि जिस रास्ते से वो गए थे उससे वापिस ले आना चाहिए, वो उसी से आए
हैं,
उनकी गलती मानी गई है मन में। ये भी पॉइंट सामने आया इसी में, जिस रास्ते से वो गए थे उनको वापसी में दूसरे रास्ते से आना था, मना करने पर भी
वो तो कयास निकालने वाले बीसियों कयास निकालेंगे। लेकिन असलियत यह है, उनका भाव भाव प्रधान विश्व रचि राखा, जिन्होंने कदम बढ़ाया उस काम के लिए, उनका भाव कैसा था? भाव विश्व कल्याणकारी था या स्वार्थ का था? तो वो तो उनकी अकाले मौत नहीं मानी जा सकती। अकाले मौत में होगा ही नहीं, भूत प्रेत बनने का सवाल ही नहीं, तो दोबारा जन्म लेंगे, ईश्वरीय ज्ञान में भी आ जाएंगे। और हाँ, क्या कुछ ऐड कर रहे थे इसमें?
सप्त ऋषि अष्ट देवों में से ही निकलेंगे या ये अलग है?
अष्ट देव और सप्त ऋषि, ऋषि उनको कहा जाता है जो पवित्र जीवन बिताते हैं, जंगलों में रहते थे। और अष्टदेव तो प्रवृत्ति मार्ग के हैं या निवृत्ति मार्ग के? तो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हैं। हाँ, उनसे पैदाइश होती है सप्तर्षियों की। तो सप्तर्षि कहेंगे सात नारायण को, और
हाँ।
सन 2000 क्या उसके बाद जो आत्माएं जन्म के गई हैं वो बच्चों को नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि 2018 तक ही प्लान चलेगा।
2000 के बाद जो जन्म लेंगे वो क्या नहीं कर पाएंगे?
बच्चे नहीं कर पाएंगे।
क्यों?
2018 तक
बच्ची में तो 5-5, 6-6 साल के बच्चे जा रहे हैं,
तो उनकी बच्ची
है,
उनकी बच्ची मांगी जाएगी।
अरे जा रहे हैं ना 5-6 साल के, 8-8 साल के बच्चे,
2 साल से बच्चों को नहीं ले
जाना, वो गोद के बच्चों को नहीं ले जाना है जो 8-8 पेशाब करते रहते हैं।
2 साल के
बच्चों को क्यों ले जाना?
9 साल
को तो सरेंडर किया जाता है।
12 महीने लिखा हुआ है
क्या?
9 साल
के नीचे के बच्चों को लाना मना कर,
जो शैतान बच्चे हैं तो उनको तो बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए।
आपने ऐसे लिखा है 9 साल से छोटे बच्चों को पट्टी में नहीं लाना है।
हाँ
सभी को ही, सभी के लिए बोला
है। 9 साल से जो कम के बच्चे हैं वो जब दिमाग विकसित नहीं होता है थोड़ा भी, वो अपना अपना काम अपने आप नहीं कर सकते हैं, माँ बाप को बिजी कर देंगे अपनी सेवा में।
बाबा अभी माउंट आबू में एक यज्ञ हुआ, आर्य समाज द्वारा, उसमें 160 किलो घी जलाया गया, आमंत्रित किया उन्होंने दूसरों को भी, और उधर से पेड़ भी कट रहे हैं, वहाँ पेड़ों में आग भी लग रही है काफी जगह,
पेड़ों में आग लग रही है अपने आप
नहीं लगा रहे हैं, कुछ लोग कुछ वैसे भी लग जाती है,
चोरी कर रहे हैं।
हाँ जी
हाँ,
तो उस पर भी लोग नहीं लग पाई और सरकार को आमंत्रण करके बुलाया कि हमारे एक में आओ, तो हमारे संस्था के कुछ लोगों के पास भी वो आए आचार्य जी, तो हमने उनसे कहा भी ये श्रेष्ठ यज्ञ तो ज्ञान यज्ञ होता है, द्रव्य लेकर रहे आप और ये पेड़ों में आग लग रही है, चोरी हो रही है, ये लोग नहीं पा रहे, तो उन्होंने कहा आप
लकड़ी तो चाहिए यज्ञ के लिए, यज्ञ करने के लिए लकड़ी तो चाहिए,
बीवी तो जला गया 160 किलो, तो ज्ञान यज्ञ तो हुआ ही नहीं वहां पर, इसलिए हम गए नहीं।
अब इसमें अकेले आर्य समाजियों को ही क्यों पकड़ते हैं? ऐसी अंधश्रद्धा की प्रवृत्तियां तो सभी धर्मों में चल रही है, कोई में किस तरह है, कोई में किस तरह। हम उनकी गलतियों को न पकड़ करके हम अपनी असली बात बताएं, वो चाहे तो उसे टैली करके देख ले, आज नहीं तो कल उनको टैली तो करना ही पड़ेगा। आज बुद्धि में बात नहीं बैठ रही है, हठयोगी बन के बैठे हैं, कल ऐसा माहौल आ जाएगा उनको सोचना ही पड़ेगा।
बाबा रामायण में ना एक पक्षी था जटायु, उसका पंख काट दिया था राम ने जब सीता को
ऐसे बहुत है जिनके माया रूपी रावण ज्ञान योग के पंख काट देता है, न ज्ञान सुना पाते हैं न याद में उड़ पाते हैं, फिर भी उनकी मुक्ति होती है अंत समय में।
और जो हमारा शरीर है, तो शरीर है ये जन्म से लेकर उसका हड्डी होती रहती है,
क्या होगा
आपकी है जो ये इनका शरीर का काम होता है, जैसे जन्म होने जन्म से इतनी आपकी रहती रहती है,
जैसे जैसे अंगों का विकास होता है, अंगों का विकास होता है बड़े होते हैं, छोटे पन से लेके बड़े तक होते हैं, भी आंखें जो है उतनी रहती,
आंखें उतनी रहती आंख का भी विकास होता है, छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसकी आंख छोटी होती है, वो बच्चा जो जो बढ़ता जाता है उसकी आंख बड़ी होती जाती है, बुढ़े बुढ़े लोग आते हैं उनकी आंखें तो ऐसी बढ़ता हुआ जाती है।
बाबा 16 साल के बच्चे ने भट्टी की और तो कहते हैं कि उसको 18 साल का होगा फिर करनी पड़ेगी,
नहीं सरकारी नियम ये है कि जब तक बालिग नहीं हो जाता है तब तक उसका एफिडेविट नहीं बनवाया जा सकता या उसका कोई भी स्टाम्प पेपर पर साइन नहीं होना है। तो ये परिपक्व करने के लिए 18 साल का हो जाने के बाद स्टाम्प पेपर पर साइन किया जा सकता है।
भट्टी भी करनी पड़ेगी?
भट्टी कर लो
बाबा, अगर वो उसने 16 साल के बच्चे ने भट्टी कर ली तो श्रीमत के खिलाफ है, उसको भी तो नहीं बात लगी है।
श्रीमत के खिलाफ
अगर कोई काम करेगा
हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, वो छोटे बच्चों को भी पाप लगता है, जितनी समझ है उतना ही पाप भी लगता है। समझ कम है पाप कम लगेगा। छोटे बच्चों की जेल अलग होती है और बड़ों की जेल अलग होती है। बड़ों को जितना दंड भोगना पड़ता है उतना छोटे बच्चों को दंड नहीं भोगना पड़ता है।
बाबा ये स्टाम्प पेपर पर रुखाबाद में जाके साइन करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा?
किस बात के लिए?
जैसे बच्चे ने 16 साल के लिए भट्टी कर ली है ना
हाँ,
तो वो अब 18 का हो जाएगा
हाँ,
तो आप क्या बोल रहे हो कि वो स्टाम्प पेपर पर साइन करने पड़ते हैं
हाँ,
तो वो वहां जाना पड़ेगा दोबारा रुखाबाद में?
यही से लिख के भेज दो, गलतियां होंगी फिर कौन सुधारेगा, वहां तो गलतियां बता दी जाएंगी।
बाबा संगठित पर हम जो कर्म करते हैं उसके मुताबिक 21 जन्मों का बसा मिलता है और मुरली में बताया था कि 21 जन्मों के आधार पर फिर 63 जन्मों का मिलता है,
है?
तो संगठित पर तो हमको ज्ञान है उसके हिसाब से हमको बसा मिलेगा 21 जन्मों का, लेकिन 21 जन्मों में तो ज्ञान ही नहीं है किसी को, वहां जो कर्म है वो तो अकर्म है, तो उनके बेसिस पे 63 जन्मों का पर्चा कैसे मिलता है?
अभी ज्ञान नहीं है 63 जन्मों का,
अभी तो है लेकिन 21 जन्मों के आधार पर 63 कम होता है, इसलिए
21 जन्मों के आधार इसलिए बताया कि 21 जन्मों का हिसाब जैसा जिस क्रम से बनेगा उसी क्रम से प्राप्ति वहां होगी। जैसे राम वाली आत्मा है सत्युग के आदि में विश्व का मालिक है तो द्वापर के आदि में रामकृष्ण वाली आत्मा है ना, वो सत्युग के आदि में सारे विश्व का मालिकाना भोगती है तो द्वापर के आदि में भी मालिकाना भोगेगी। त्रेता के आदि में फिर मुखिया बन जाती है, ऐसे ही द्वापर वो कलयुग के आदि में फिर रामवाली आत्मा उसी स्टेज में पहुंच जाएगी।
मुख्य बेस तो संगम युग का ही हुआ ना,
और क्या है तो, लेकिन संगम युग तो हुआ लेकिन संगम युग के आधार पर 21 जन्म बना ना, तो जो 21 जन्म बना है जिस क्रम से बना है उसी क्रम से वहां प्राप्ति करेगी 63 जन्म में। त्रेता का अंतिम जन्म रामकृष्ण वाली आत्माओं के लिए कठिनाई का युग है, तो कलयुग का अंत समय भी ऐसा ही है।
बाबा अगर वैज्ञानिकों के पास एडवांस का कोई भाई ज्ञान में ये पॉइंट भेजे कि जिस चांद पर तुम पानी खोजने जा रहे हो, जिस चंद्रमा पर तुम पानी खोजने जा रहे हो, कुछ समय बाद वो प्रशांत महासागर में आके वापस मिलेगा, तो क्या ये सही है, इसको वो वेरीफाई कर पाएंगे एडवांस का भाई उसको चैलेंज करेंगे इस सच्चाई को वो मान्यता दे पाएंगे?
हमारे दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं वो ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार बुद्धि चलाने के लिए मजबूर नहीं हो जाएंगे।
हमारी रिसर्च रुक जाएगी
है?
वो बोलेंगे हमारी रिसर्च रुक जाएगी, हमको करना ही करना है।
क्या हो जाएगी?
रिसर्च रुक जाएगी।
खोज तो उनकी वैसे भी रुकी हुई है, वो बड़मूला ट्रायंगल के बारे में क्या खोज कर रहे हैं, क्यों चुप हो गए?
जाए नहीं पाते फिर इनको।
वो मजबूर हो जाएंगे सोचने के लिए।
तो पर जाने से भी डरते हैं, तो पर भी डरते हैं।
हाँ जी,
मैं स्वयं प्रभा का जिक्र
है,
रामायण में स्वयं प्रभा का जिक्र है, स्वयं प्रभा का,
स्वयं प्रभा रामायण में,
हाँ
स्वयं प्रभा का जिक्र है,
स्वयं प्रभा,
हाँ जी जिक्र बता दें
क्या स्वयं प्रभा
जब वानर सेना गई तो आगे,
अरे लफड़े में क्यों पढ़ते हो, बाबा ने कहा ये शास्त्रों में सब भूसा बना पड़ा है, शास्त्रों में से जो ब्रह्मा के मुख से जो बातें शास्त्र की बताई गई हैं, उन बातों पर मनन चिंतन मंथन करो, मैं शास्त्रों के सार सार की बातें उठा उठा के तुमको बताता हूँ, तो तुम सारा ही उठाओगे तो हाल क्या होगा, बुद्धि बिखर जाएगी, कहीं क्या नहीं रहोगे, तो तुंडे तुंडे मत भिन्ना हो गया, अपने अपने तरीके के चित्र बना दिए, अपने अपने तरीके के शास्त्र बना दिए, जिसकी बुद्धि में जो आया जैसा आया वैसा लिख मारा, कभी सात्विक स्टेज है बनाने वालों की, कभी तामसी स्टेज है, तो सच्चाई कहाँ होगी, सात्विक स्टेज वालों की सच्चाई होगी, बाकी सब उसमें कचरा भर दिया।
बाबा गुरु नानक ने ऊपर से आने वाली शोर में प्रवेश किया ना, उसके बाद है गुरु नानक ने तो ऊपर से आने वाली
शोर में प्रवेश किया, हाँ
उसके बाद जो गुरु हुए हैं दस गुरु उनके, उनमें चले ना दस गुरु,
हाँ
उनमें भी क्या ऊपर से शोर प्रवेश करते हैं,
500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से प्रत्येक मनुष्य आत्मा 33 करोड़ देवताओं में प्रवेश करती है, टाइम टू टाइम प्रवेश ही करती रहती है, 33 करोड़ देव आत्माएं ही निमित्त बनती है, ऊपर से 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को जीवन देने के लिए,
33 करोड़ आत्माओं में सभी आत्माएं प्रवेश करती है,
सभी आत्माएं चाहे क्राइस्ट हो चाहे साधारण हो।
बाबा एक बताया कि सिख धर्म में जो बौद्ध धर्म के सन्यासी है ना,
है
वो सन्यास धर्म से होते हुए सिख धर्म में मतलब जाते हैं, वो कैसे
है,
जो बताया ना इस वाणी में कि जो बौद्ध धर्म के सन्यासी हैं वो सन्यास धर्म से होते हुए फिर सिख धर्म में मतलब जाते हैं, वो
ये तो पता है कि हर धर्म की आत्मा सतयुग के आदि में थी या नहीं थी, संगम युग में तो सभी थे कि नहीं थे, अरे सभी थे, लेकिन जिन्होंने अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ किया वो आज से ही परमधाम से नीचे उतर आए, जिन्होंने द्वयम नंबर का पुरुषार्थ किया वो थोड़े समय परमधाम में ही लटके रहे फिर नीचे उतरे, ऐसे ही जो जितना परवर्ती काल का धर्म है वो आत्माएं उतने समय तक ऊपर ही रहती है, जो अपने धर्म की पक्की होती है वो, और वो जब उतरती है तो भारत के 33 करोड़ देवी देवताएं देव आत्माएं जो और धर्म में कन्वर्ट होने की हरकत में आती है उनमें प्रवेश कर जाती है, तो निश्चित है कि सतयुग के सातवें नंबर का जो नारायण है आज समाजी से पहले सिख धर्म की आत्मा होगी कि नहीं कन्वर्ट होने वाली, ऐसी आत्मा उसमें होगी कि नहीं सतयुग आदि में, जो कलयुग के मध्य में आकर के सिख धर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अरे होंगी, इससे साबित हो जाता हो जाता है कि वो आत्मा उससे पहले कौन से धर्म में थी। इसमें संन्यास में भी रह सकती है, उनके संस्कार मिलते जुलते हैं प्योरिटी के। और
जो सिमिलैरिटी बताई है कि जो 10 गुरु हैं, 10 धर्मों के उनका कनेक्शन है, सिमिलैरिटी बताई जाती है।
यहाँ भी तो झाड़ के चित्र में 10 ही धर्म दिखाए हैं।
जो प्रजाता है उसकी सिमिलैरिटी गुरु नानक से है।
सिमिलैरिटी भी तो मिल रही है। देवी देवता सनातन धर्म के नजदीक सबसे ज्यादा नजदीक रहने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म? नहीं, बौद्ध धर्म तो नास्तिक है, स्वर्ग को नहीं मानते, नरक को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, वो तो एक तरह का नास्तिक धर्म हो गया। प्रतिमा को मानते हैं लेकिन क्या वो भगवान है? फिर और क्या बौद्ध धर्म से पहले बौद्ध धर्म की आत्मा नहीं थी? बौद्ध धर्म से पहले, महात्मा बुद्ध के आने से पहले बौद्ध धर्म की आत्मा भारत में नहीं थी? थी नहीं तो कन्वर्ट कैसे हुए? और
33 करोड़ आत्माएं तो अंत समय तक उतरते रहते हैं।
हैं?
33 करोड़ जो देव आत्माएं हैं,
हाँ,
तो कलयुग के अंत तक उतरती है ना?
कलयुग के अंत तक हर धर्म की आत्माएं अंत तक उतरती है, देवता धर्म की भी अंत तक उतरती है। और
बाबा जो आत्मा आगे आगे कन्वर्ट होती है, जैसे आपने बोला सिख धर्म में तो पीछे भी तो थी वो आत्मा किसी और धर्म में थी, तो उसको तो सिख धर्म की आत्मा थोड़ी कहेंगे, जो पीछे जिस धर्म में थी उसी धर्म की बोलेंगे ना, जो मुख्य तो पीछे का धर्म माना जाएगा ना।
क्या पूछ रहे हैं, समझाया?
सिख धर्म से पहले वे आत्मा जिस धर्म में थी तो उसी धर्म की आत्मा कहेंगे, सिख धर्म की थोड़े कहेंगे।
जैसे पहले बुद्ध धर्म की थी फतेहगढ़ तो बुद्ध की
हुई, देवी देवता धर्म का ही तो कहेंगे,
तो उसको कन्वर्ट हो गए सिख धर्म में, वैसे
देवी देवता धर्म के ही कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे धर्म
में। हाँ, देवी देवता धर्म की हुई सर, सिख धर्म की तो ना हुई ना,
सिख धर्म की भी होगी नहीं तो सिख धर्म में चली कैसे गई? वो और धर्मों में क्यों नहीं कन्वर्ट हुई?
सिख धर्म में कन्वर्ट हो गई
जब सिख धर्म के गुरु नानक आए, उसके बाद ही उन्होंने कन्वर्शन स्वीकार किया। दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुई, पहले क्यों नहीं कन्वर्ट हो गई? तब तक स्थायी रही देवता धर्म में। और
मुस्लिम धर्म में अल्लाह के साथ अकबर क्यों करते हैं? अकबर का नाम क्यों लेते
हैं? अल्लाह हमारे सबसे ऊंचा, जैसे सबसे ऊंचा फूल है कमल का फूल, तो फूलों में अल्लाह कहेंगे कमल, लेकिन जो नीचे ही किस्म के फूल हैं वो भी फूल ही तो हैं, कांटे तो नहीं हैं, तो उन फूलों में कौन सा फूल ऐसा है जो बहुत छोटा भी है और बहुत दवाइयों में काम आता है? अक का फूल। तो बड़े से बड़ा तो वो है कमल का फूल, लेकिन उसके साथ फूलों में ऐसा फूल कौन सा है जो छोटा होते हुए भी बहुत काम का है, जिसे कहते हैं अंधों में काने राजा। सारी दुनिया तो अंधी है, उन अंधों के मुकाबले तो अच्छा है, तो अल्लाह के साथ अकबर भी जुड़ा हुआ है। जैसे शिव के साथ कौन जुड़ा हुआ है? शंकर। शंकर भगवान है?
नहीं,
सबसे ऊंचा बन के रहता है हमेशा, हमेशा सबसे ऊंचा बनकर रहता है? नहीं रहता, सबसे नीचा भी बन जाता है। दुनिया में अगर नीच से नीच पार्ट कहा जाए तो किसका है? अरे वही प्रजापति है, जो आदम सबसे ऊंचे थे ऊंचा था, वही आदम सबसे नीचे थे नीचे बन जाता है।
तो ये इसका
जैसे शिव के साथ शंकर का नाम जुड़ा हुआ है, ऐसे ही अल्लाह के साथ अकबर का नाम जुड़ा हुआ है।
तो इसका अनुकरण अगर बाबा दूसरी आत्माएं करेगी तो वो तो धोखा खा जाएगी, शंकर के लिए तो कहा कि कांटे से कांटा निकालने के लिए वो ऐसा बनता है, लेकिन दूसरी आत्माएं अगर ऐसा करेंगी तो धोखा खा जाएगी।
कैसा करेगी?
शंकर जैसा,
वो बड़े से बड़े कांटे बनती हैं, बन पाती हैं, तो फिर एक औरत को रखने गाल चुपट्टी हो जाते हैं, आंखें अंदर धस जाती हैं, जिनको दो चार होती हैं उनकी बिलबिलाहट हो जाती है, वहां तो 16,000 है पीछे, इसलिए तो गुरु जी बोला यह प्रजापिता ब्रह्मा की कहानी, उन्होंने नाम दे दिया है दादा लेखराज ब्रह्मा का, किताब लिख दी मोटी सी, क्या किताब लिख दी? एक अद्भुत जीवन कहानी, चित्र किसका छाप दिया? ब्रह्मा बाबा का।
बाबा देव आत्माओं के लिए कहते हैं कि वो देव आत्माएं अंत तक नीचे उतरती रहती हैं, तो फिर उनको देव आत्मा क्यों कहते हैं? उनको तो अच्छे पीरियड में नीचे उतरना चाहिए ना, सतो प्रधानता के समय में, ये अभी तमो प्रधानता के समय में।
तमो प्रधान दुनिया में अच्छे लोग नहीं है?
नहीं,
इस तमो प्रधान दुनिया में अच्छे परिवार है या नहीं?
बहुत है
परिवार,
ऐसे अच्छे परिवार देखे जा रहे हैं जिन परिवारों में एक ही चूल्हे में रोटी बनती है,
नहीं,
और जो मुखिया है वो ऐसे रहता है परिवार में जैसे कोई राजा का राज्य चल रहा हो, उस मुखिया की बात को परिवार का कोई भी सदस्य नीचे से लेकर ऊपर तक का काट नहीं सकता, और सब बड़े शांति से रहते हैं, और इम्प्योरिटी का नाम निशान नहीं।
बाबा ऐसी आत्माएं काफी लंबे समय तक ऊपर परम धाम में लटकी रहती हैं, तो अभी उनका समय आया है, ऐसा उनमें क्या, इसके पीछे क्या रहस्य है?
ऐसा यही रहस्य है कि उन्होंने ज्ञान बाद में लिया, वहां 5,000 वर्ष में सचरूपी रंगमंच पर उतरते हैं बाद में, यहां 100 वर्ष के संगमयुगी पीरियड में अंत में उतरते हैं ज्ञान में, ज्ञान नहीं उठाते।
बाबा अभी जो भी आत्माएं हैं आजकल जो लोग सबको शुद्ध करते हैं, हमको कहते हैं, हमको अभी जो उतर रहे हैं जहाँ है जहाँ पर उनको सभी को हम क्या कहते हैं? शुद्ध रहे हैं, सभी
जो उतर रहे हैं सब शुद्ध है,
सभी को बोल रहे हैं अभी कलयुग में होते हैं सभी शुद्ध, तो देवता तो जहाँ एक भी नहीं, जहाँ देवता है वहां शुद्ध नहीं, तो उनको देवता क्यों कहेंगे? हम अभी उतर रहे हैं,
देवता धर्म के हैं ये, देवता नहीं कहा।
33 करोड़ में तो आते हैं ना बाबा,
33 करोड़ देवताओं की लिस्ट है, लेकिन असली जैसे बाबा ने बताया कि 84 जन्म लेने वाले पक्के देवता हैं, तो जो सतयुग के पहले जन्म में आएंगे वो उनके मुकाबले कच्चे हुए या पक्के हुए?
कच्चे।
और फिर उसके बाद और आते रहते हैं, उनको कच्चा कहेंगे या पक्का कहेंगे? त्रेता में जो देवता देवात्माएं आती हैं वो सेमी देवताएं बता दी, तो देवताओं में भी कैटेगरीज हो गई, कोई 84वें जन्म में नीचे उतरती हैं, 84वें जन्म में जाकर के वो उनकी शूटिंग होगी देवता धर्म में आने की, बाप की बात मानने की। जब जागे तब बोल,
और ब्यास की भी गतियां चली है ना?
है
ब्यास की भी गद्दियां चली हैं, तो उसकी जो गद्दी के वारिसदार हैं वो अष्टदेवों में से हैं।
वारिसदार नहीं होते हैं सन्यासियों में,
मतलब जो बैठते हैं
हाँ गद्दी नसीब होते हैं, चेला है।
तो कौन सी माला के हैं?
कौन सी माला के हैं? सन्यासियों की माला अपनी अलग होती है, जैसे हर धर्म की अलग माला होती है। और
बोलते कि एडवांस पार्टी धूप धूप में जाने लगी है, लेकिन एक दिन प्रत्यक्ष होगी तो क्या वो लोग सूक्ष्म लोग पे मानते हैं, लेकिन क्या तो हम लोग ही है, तो क्या हमारी बहने सुसन है, क्या ये बाहर आकर प्रत्यक्ष कर नहीं पाते?
बाहर आके प्रत्यक्ष कर
दुनिया में, दुनिया में
एडवांस पार्टी धूप धूप में जाने लगी है, बाप को प्रत्यक्ष कर
और क्या ढोल मजीरा बजाए?
नहीं नहीं
हाँ
वो कह रहे
हैं गुप्त
रूप में
कार्य करिए, वो उनका मतलब यही है कि हम तो ढोल मजीरा बजाते हैं,
देखो गुप्त रूप में कार्य प्रत्यक्ष कर,
हम ढोल मजीरा बजाते हैं तो हम प्रत्यक्ष है, और वो चुपचाप अंदर बैठते हैं, चुपचाप अपना एक एक को एक एक को बैठ समझाता है, तो ये उनका गुप्त है।
बाद में प्रत्यक्ष करेगी उनके बाप को,
क्या बाद में प्रत्यक्ष करेगी
बाप को प्रत्यक्ष करेगी,
माने उनकी तरह ढोल मजीरा बजाएंगे
कैसे कर
पूछ रहे, क्या बात है? यही बात है कि जो गुप्त होता है उसमें ताकत ज्यादा होती है, उसको जितना छुपाएंगे उतना ज्यादा प्रत्यक्ष होगा,
कार्य अंदर नहीं चलेगा।
अच्छी बात है ना, या घोसले में ज्यादा फायदा है या गुप्त में ज्यादा फायदा है? नाटकबाजी करके रात में चमचमा चेहरा दिखा करके और वो गुलाल और वो सितारे लगा करके खूब अच्छी तरह से दिखावा कर दो, रात रात भर के बाद सवेरे को क्लास असली चेहरा सामने आ गया।
बाबा एक तरफ कहा मन के मौन से नई रंगत निकलेगी
है,
दूसरी तरफ ये कहा कि सच्चाई सर चढ़ के बोलती है,
है?
सच्चाई सर चढ़ के बोलती है,
सच्चाई सर के ऊपर चढ़ के बोलती है, ठीक है।
तो एडवांस वाले भाइयों के सामने अब ये बात आ जाती है कि वो झूठ को बर्दाश्त करेंगे तो सर तो बोलेंगे बोलेंगे तो वो तो प्रत्यक्ष होके रहेंगे फिर, और वो अपने आप को झूठ भी रखना पड़ेगा उनको,
प्रत्यक्ष तभी होंगे जब उनकी मनसा सुधरेगी, या सिर्फ वाचा से ही बोल बोल करेंगे तब प्रत्यक्ष होंगे, मनसा भी नहीं, मनसा ही जब तक नहीं सुधरेगी, प्योरिटी में जब तक इजाफा नहीं होगा तब तक प्रत्यक्षता नहीं होगी। ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं प्योरिटी में परिपक्व होते हैं तो उनकी शोहरत में इजाफा हो जाता है। ओम शांति।